ओम शांति। 21 अप्रैल 2025, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट और यूट्यूब लाइव 2 लिंक दिए हैं। ये दोनों लिंक चारों समय के लिए रोजाना के लिए एक ही। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है, जुड़ने में कठिनाई आ रही है, तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर लें, प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमारे हित में कोई सुझाव रखते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा कैसे नीचे बच्ची, बाप आया है तुम्हें करंट देने, बताओ फिर तेरे मारना चाहता है, करंट लगेगा तो मर नहीं जाएंगे, मारना चाहता है, ये मरेंगे तभी तो मेरे बनेंगे। करंट का मतलब होता है शक्ति, ये बात अलग है कि मैं उस शक्ति को फेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता। करंट आती है तो हमारे जितने भी साधन है वो काम करते हैं, करंट नहीं आए तो ये साधन काम नहीं करते। काम करंट का दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें वो हमारी मर्जी है। तो बाबा हम आत्माओं को करंट देने के लिए आए, अपनी शक्ति देने के लिए आए, जिस शक्ति से हाँ जी करंट का क्या मतलब है? करंट का मतलब आप शक्ति लेंगे। बिजली की तार में करंट आता है तो हमारे जितने भी साधन है वो काम करते हैं, यदि उसमें करंट ना आ रहा हो तो हमारा कोई भी साधन काम ना करे। वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो एनर्जी वो ऊर्जा हमारे साधनों को यूज करने में चलाने में मदद करती है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का जो ज्ञान है वो करंट है, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, जिससे हम अपने दिनचर्या को अच्छे तरीके से चलाने में सक्षम हो पाते। तुम डेली अभिमानी होंगे, जब करंट मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, समझ मिलेगी तो हम अपने आप को समझ पाएंगे कि हम आत्मा हैं। हम अपने आप को आत्म अभिमानी बना सकेंगे, देही अभिमानी बना सकेंगे। बुद्धि योग एक बाप से होगा, हमारा कनेक्शन एक बाप से जुड़ा रहेगा, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि परमात्मा ही हमें राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, परमात्मा ही हमें वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो समझ दे सकते हैं, शक्तियां दे सकते हैं, जिनसे हम अपने जीवन में कामयाब होंगे, सफल होंगे। तो परमात्मा हमें वो ऊर्जा, वो शक्ति देने वाला है और हम अपना कनेक्शन उसके साथ जोड़ देंगे। जब हम उसके साथ कनेक्शन जोड़ के रखेंगे, हम परमात्मा से लगातार शक्तियां प्राप्त करते रहेंगे। अब हमारी मर्जी है कि हम परमात्मा से कनेक्शन तोड़कर दुनिया वालों के साथ जोड़ना चाहें। अब दुनिया वालों के पास जितनी ऊर्जा होगी वो मिलेगी, जैसी ऊर्जा होगी वैसे मिलेगी, पर जब हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमें वहां से जो एकदम ट्रू नॉलेज, सत्य ज्ञान, सत्य शक्ति, आत्मा को मिलने वाली शक्तियाँ, जो 7 गुण 8 शक्तियाँ हैं, वह हम परमात्मा से अपने जीवन में लेने में सक्षम हो पाएंगे। प्रश्न, सबसे बड़ा आखिरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर, अशांति फैलाना, ये है सबसे बड़ा आखिरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं, वो जहां जाएंगे वहां अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते। शांति कहाँ होती है, कब होती है? अशांति कहाँ होती है, कब होती है? शांति और अशांति के बीच में आ शब्द लगता है। आ मीन्स अभाव, आ मीन्स माया। आ लगने के कारण शांति का अभाव हुआ तो अशांति आ गई। पर शब्द हमें बताता है भाई शांति नहीं है, शांति कम हो गई है। पर उन्होंने शब्द हिंदी के अंदर इसी प्रकार से बनाए, इतना सोच समझ कर बनाए गए जो हमें मतलब समझ में आ गया। मतलब मेरे पास शांति नहीं है, अशांति आ गई। अशांति आने का मतलब है, आ का मतलब है अभाव, आ का मतलब है ना, आपका आपका मतलब है नेगेटिव, कोई चीज नहीं है। मरना होता है मर, परंतु आ लग गया अमर नहीं मरेगा, मर लग गया तो मरेगा, आ लग गया तो अमर नहीं मरेगा। जन्म लिया, अजन्मा जन्म नहीं लिया। भोगता भोगने वाला, अभोगता अभोगता मतलब नहीं भोगता। आ नहीं के लिए आता है, माया के लिए आता है। माया का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भी ना वो नेगेटिव हो, माया को आप पॉजिटिव भी ले सकते हो। अवगुणों का अभाव हो जाए तो क्या होगा, गुण हो जाएंगे। हाँ जी, आस्तिक ना नास्तिक। तो नास्तिक क्या है और आ क्या है, मतलब जो ना हमारे पास आस्तिक हो गया कि जो परमात्मा का कहना मानता है, और नास्तिक हो गया जो परमात्मा का कहना नहीं है। बस शब्दों को अपने अपने हिसाब से हमने देखना है। खैर, हम वापिस आए कि शांति का वर मांगते हैं, हे भगवान हमें शांति दो। ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम चल मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति, बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, गीत तो ये भक्ति मार्ग का है। फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है और कोई ट्रांसफर करना है, पर इस भक्ति के गीत को ज्ञान में ट्रांसफर और कोई कर नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते दीवा क्या है और तूफान क्या है। बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योति उझाई हुई है। किसको याद है उझाई हुई? उझाई हुई किसे कहते हैं? और कौन बताएगा? उधाई हुई
खत्म हो जाता है, जब उस पार्टी को थोड़ा बहुत तेल बचता उसे
वो लास्ट स्टेज होती है। जब बत्ती में तेल कम होता है तो बेचारी बुझने लगती है, बुझने लगती है तो लौ ऊपर उठती है, छोड़ देती है उसको, जाने लगती है। तो इतने में कपास की बत्ती देना पीछे से कहीं से खींच करके थोड़ा सा तेल लेके आती है, तो फिर आके जुड़ जाती है। और फिर वो जितना थोड़ा सा तेल लेके आई थी तो वो फिर बुझने लगती है, तो फिर पीछे से बड़ा ऊपर बुझने लायक हो जाती है। बस अब बुझने वाली है क्या, बुझ जाएगी और फिर वापस जल जाती है। थोड़ा सा तेल फिर आ जाता है, थोड़ा सा तेल फिर आ जाता है, और जब तक बाकी तेल खींच खींच करके लाती रहती है वो टिमटिमाना वो उधाई कहा जाता है। उस अवस्था को कहा जाता है उधाई। बस अभी दीवा बुझा की बुझा, बुझा की बुझा। अब बाप आए हैं ज्योति जगाने, कोई मरते हैं तो भी दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधेरे से जाना पड़ेगा। क्योंकि हमने दिया जला के रखा है यहाँ और आत्मा जा रही है वहाँ, आत्मा जा रही है धर्मराज के पास, चित्रगुप्त के पास अपना न्याय करने के लिए, यदि उसको हम दीवा नहीं जला के रखेंगे तो वहां उसे अंधेरा लगेगा। और वास्तव में सच्चाई ये है कि आत्मा तो जहां पहुंचना था वो उसी सेकंड में पहुंच गई थी। अब ये दीवा जला के रखने का कारण क्या था? ये दिया जला के रखने का कारण सिर्फ उस समय के लिए था जब, क्योंकि लाइट के साधन नहीं होते थे तो कमरे में अंधेरे में डेड बॉडी पड़ी होगी तो इधर उधर से चीटियां कीड़े आकर के इस बॉडी को नुकसान करेंगे ताकि वातावरण खराब ना हो और वो सुरक्षित रहे, क्योंकि अब बॉडी को वो चूहे आकर के कुछ भी आकर के नुकसान करने लगेंगे तो सारे घर के अंदर वातावरण खराब हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर उसको सावधान रखने के लिए, मतलब उसके पास ना जाए उसके लिए उसके चारों तरफ हल्दी भी डाल देते, दीवा भी जला के रखते, मतलब जो भी सारे नियम है वो उसको सुरक्षित रखने के लिए था ताकि जब तक हम इसका संस्कार नहीं करते तब तक ये शरीर यहाँ पर खराब ना हो पाए। और खराब होगा तो नेचुरल सारा वातावरण खराब करेगा और हमें उसकी सफाई करने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए दीवा जला के रखते थे ताकि रोशनी रहे और बैठे रहते थे ताकि साफ रहे, कोई ना कोई एक दो जने वे जागते रहे, इसलिए दीवा जलाते थे। अब सतयुग में तो ये बातें होती नहीं, वहां तो सोझरे में होंगे, भूख आदि की बात ही नहीं, वहां तो बड़े माल मिलते हैं, जहां है घोर अंधियारा, सीधी दुनिया है ना, सब आत्माओं की ज्योति उजाई हुई है, सबसे जास्ती ज्योति तुम्हारी उजाई हुई, सबसे ज्यादा हमारी क्यों उजाई हुई है ज्योति नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले आए थे, हमारा तेल अब बस खत्म होने वाला है, बस तभी हमने जब उजाई हुई ज्योति हुई तो बाबा ने आकर हमको पकड़ लिया, हमें ज्ञान घृत डाल दिया और जिससे हमारी ज्योति फिर जग उठी है। सबसे जास्ती ज्योति तुम्हारी उजाई हुई है, तुम खास तुम्हारे लिए बाप आते हैं, तुम्हारी ज्योति उजा गई है। अब करंट कहाँ से मिले, बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से ही मिलेगा, मिलेगी, करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है, यदि बिजली अपूरी आ रही है तो हमारी रोशनी बल्ब पूरी देता है, और यदि हमारे पास पीछे से करंट हल्का आ रहा है तो रोशनी फिर कम मिलेगी। बड़ी मशीन से करंट ले रहे हो, बड़ी मशीन जो बाबा है, बड़ी मशीन जहां से करंट आ रहा है, देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए, जरूर इतनी बड़ी मशीन होगी, ये है बेहद की बात। सारी दुनिया की आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, उनको करंट देना है, मूल बात बाप समझ जाते हैं, बुद्धि योग बाप से लगाओ, देही अभिमानी बने, कितना बड़ा बाप है, सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है, सबकी ज्योति जगाने, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योति जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे ज्योति जगाते हैं, ये तो कोई नहीं जानते, उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कहते हैं, परमात्मा को ज्योति स्वरूप भी कहते हैं और फिर परमात्मा को सर्वव्यापी भी कह देते हैं, जो उनको आता है वही कह देते हैं। यदि परमात्मा ज्योति स्वरूप है तो वो सबको दिखाई देना चाहिए, अब वो सर्वव्यापी है फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता, ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है, साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का, वो देखते हैं अखंड ज्योति है, दिखलाते हैं। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, बंद करो, बस करो, बस करो, बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो, सबको समझाना भी ये है कि तुम आत्मा हो, आत्माएं ऊपर से यहाँ आती हैं, पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, ततो प्रधान है गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं, गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र जी बनना है, जब अपवित्र बनते हैं तो तब गॉड फादर को बुलाते हैं, गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुखी दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने हैं, तब तो कहते हैं बाबा आओ आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ, यहाँ तो शांति धाम ले चलो। यहाँ से हमें कहाँ ले चलो, शांति धाम ले चलो, जहाँ शांति, यहाँ तो अशांति, यहाँ तो सब दुखी। शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है यहाँ शांति में रह तो रह नहीं सकते, इस संसार के अंदर कोई भी शांति में रह नहीं सकता। यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, क्योंकि इस समय आत्मा के पास वो शांति की शक्ति नहीं है जिसके कारण वो अशांत है। शांति तो है ही शांति धाम में, शांति तो होती कहाँ है, शांति धाम में होती है। सतयुग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से, एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है, समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा वहाँ अशांति ही फैलाएगा। जो अशांति वाला मनुष्य है वो जहाँ भी जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आखिरी स्वभाव है ना, उसके अंदर जो स्वभाव है वो आखिरी, वो आखिरी बात बोलता है, आखिरी काम करता है। अभी तुम जानते हो सत्युग है सुखदा, सत्युग है सुखदा, वहाँ सुख और शांति दोनों है। वहाँ परम धाम में तो सिर्फ शांति, परम धाम में क्या है, सिर्फ शांति है। उनको कहा जाता है सी साइलेंस। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए ना तो बाप को याद करो, तुम्हें मुक्ति चाहिए तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है, पहले जीवन मुक्त होते हैं फिर जीवन बंध में आते हैं। आधा आधा है ना, सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी ने जो एक आधा जन्म लिए आते होंगे वह क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे, तुम तो सारा अनुभव करते हो, तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं फिर इतने जन्म दुख में होते हैं, फलाने फलाने धर्म में नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पार्ट ही बाद में है, भल नया खंड है उनके लिए, जैसे कि ये नई दुनिया है, जैसे बौद्ध खंड क्रिश्चियन खंड नया हुआ ना, उनको भी सतो प्रधान सतो रजो तमो से पास करना है। झाड़ में तो झाड़ में भी ऐसे होता है ना, आहिस्ते वृद्धि होती जाए जाती है, पहले जो निकले वे नीचे ही रहते हैं, देखा है ना, नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं, छोटी छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं, फिर बोर फूल निकलता है, फिर बोर छोटे छोटे बोर निकलती है जो फिर फूल बनते हैं। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है, तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो वो आत्मा सड़ जाती है, इस ज्ञान को नहीं उठा पाती। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उसमें नंबरवार बनते हैं, राजधानी स्थापन होती है, राजधानी स्थापन होती है ना। बहुत फेल हो पड़ते, बहुत बच्चे फेल हो पड़ते हैं। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है, कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा। वे बाप की जिद पर चढ़ ही नहीं सकते। जो पतित हो गए वो बाप की जिद पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक के पूरा समाचार पूछ पोता मिल लेते हैं। जैसे अवस्था वैसा प्यार। बाहर से भल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं ये बिल्कुल ही बुद्धि है। सर्विस कर नहीं सकते, ख्याल तो रहता है ना। अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसे है, बच्चे बाहर में भी सर्विस करते हैं ना। भल कोई भी धर्म वाला हो उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता है ना। लिबरेटर और गाइड कौन है उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, प्योरिटी है नहीं, पवित्रता है नहीं, अब मुझे याद करो। बाप तो एवर प्योर है, बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते। परमात्मा ही एक आत्मा है जो एवर प्योर सदा पवित्र रहती है, क्योंकि वो अभोक्ता है। और अभोक्ता होने के कारण अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता। बाकी सब आत्माएं भोक्ता होने के कारण, भोगी होने के कारण अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं। तो पवित्र से अपवित्र, शक्तिशाली से शक्तिहीन हो जाते हैं। बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। इस समय सब पतित है, इसलिए बाप राय देते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाए, तुम्हारे में वो गुण और शक्तियां भर जाएंगे। अब मौत को सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है, माया का पंप कितना है। इसलिए मनुष्य समझते हैं ये तो स्वर्ग है, एरोप्लेन बिजलियां आदि क्या क्या है, ये है सब माया का पंप। जितना भी विज्ञान का खेल दिखाई दे रहा है ये सारा माया का पंप है। पंप माना दिखावा, ये अब खत्म होना, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये बिजलियां आदि जब सब स्वर्ग में तो होते हैं, ये बिजलियां आदि स्वर्ग में तो होते हैं, अब ये स्वर्ग में कैसे आएंगे। जरूर जानकारी वाला चाहिए ना, तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे, वे राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ गए। वो कारीगर इस समय वो ज्ञान वो नॉलेज सीख कर जाएंगे, जिससे तुम्हारे सत्युग में लाइटों का रहने की व्यवस्था का सब कुछ करेंगे। तो हीरे द्वारा भी उसमें लगाने के पड़ेंगे ना, कहाँ रखा जाए तो उसकी लाइट जो है ना चार तरफ जाए, क्योंकि उनको चलाने के लिए तो बिजली तो चाहिए नहीं, वो तो चलेंगे सूरज की रोशनी से, चांद की रोशनी से। उसको ओपन रखा जाएगा ताकि चांद अच्छी तरह से रोशनी ले और सबको, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे पहले जो शुरू हुआ, क्योंकि जब बाबा आए और ज्ञान आया तो मतलब उस समय जो साइंस का रूप था वो बदलता बदलता बिगड़ता आया, परंतु वहां पर जो विज्ञान का रूप होता है वो एकदम सत्वप्रधान होता है। आत्माओं में सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है और वहां के साधन भी से उसी प्रकार से चलते। वे राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाए। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे, ये फैशन सारा बाहर विलायत से आता जाता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें से बाबा का परिचय देना है। बाप को याद करो, तुमको भी याद में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है। इसमें ही माया के तूफान बहुत आते हैं। इसमें ही माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं माँ एकम याद करो, बस मुझ एक बाप को याद करो। ये तो अच्छी बात है ना, क्राइस्ट भी उनकी रचना है, शिव बाबा की रचना है। रचयिता सुप्रीम सोल, परम आत्मा तो एक ही है, बाकी सब है रचना। वर्षा रचता से ही मिलता है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है उससे ही वर्षा मिलता है। ऐसे अच्छी अच्छी पॉइंट्स जो हैं वो नोट करनी चाहिए, जो मूल्यों में अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उनको नोट करो। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना, वो है वे सुख धाम और शांति धाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम सुख धाम ले चलो। जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती है। हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का और दूसरा शांति धाम का। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई हैं उनको बाप श्री मत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट नोट करो तो समय पर काम आ जाए, आ सकती है। बोलो शिव बाबा का आशीर्वाद हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे ये फिर कौन है जो गॉड फादर शिव बाबा का ऑक्यूपेशन बताते। बोलो तुम आत्मा के रूप में तो सब ब्रदर्स, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन होते हैं। गॉड फादर जिससे गॉड फादर जिसको लिबरेटर गाइड मार्गदर्शक कहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन उनका जो धंधा है वो दुनिया वाले नहीं जाते। उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बतलाते हैं, जैसे बाबा का ऑक्यूपेशन है वो हम आपको बतलाते हैं। जरूर हमको गॉड फादर ने बताया तब तो आकर हम तुम्हें बता पाए। सन शोज फादर बच्चे जो है बाप का नाम बालक करते हैं, ये भी समझाना पड़ता है, ये भी समझाना चाहिए। आत्मा बिल्कुल छोटा सा संस्कार है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। उसे केवल दिव्य दृष्टि से, दिव्य ज्ञान से, जो परमपिता परमात्मा आकर देते हैं, समझ के हम उसे समझ सकते हैं। कितना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। इतना सूक्ष्म और सब किसी भी रूप से देख नहीं सकते, दुनिया के किसी सूक्ष्म दृष्टि यंत्र से भी नहीं देख सकते। तो दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। बिंदी है, देखने से फायदा थोड़ा ही हो सकता है। मान लो हमने बिंदी को देख भी लिया, उससे क्या फायदा होना है? बात भी ऐसी ही बिंदी है, जैसे हम आत्मा बिंदी हैं, ऐसे शिव बाबा कहते मैं भी बिंदी हूं, मैं भी बिंदी हूं। उनको सुप्रीम सोल कहते हैं, शिव बाबा को क्या कहा जाता है? सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसी ही है, चाहे वो परम आत्मा है, चाहे वो धर्म आत्मा है, चाहे वो दुष्ट आत्मा है, सभी आत्माएं एक जैसी ही होती है। परंतु हर आत्मा एक जैसी होते हुए भी अद्वितीय है, दो आत्माएं एक जैसी नहीं होती। ये बात भी हमने साथ में याद रखनी है कि दो आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती, दोनों आत्माओं में अंतर रहता है। परंतु वे सुप्रीम, हम आत्माएं और परमात्मा एक जैसे हैं, परंतु परमात्मा जो है वो क्या है? सुप्रीम है, सर्वोच्च, नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर और गाइड है। उनकी बहुत महिमा करनी पड़े। जरूर बाप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। बाप ही बतलाते हैं आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना। नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश, नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश करके देंगे। मतलब मैं भी, हाँ जी,
परमात्मा नॉलेज मतलब,
हाँ प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज। तो परमात्मा कैसे, मैं नॉलेज भी दूंगा तो नॉलेज देने के लिए मुझे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, बिना शरीर के मैं ज्ञान दे नहीं सकता। आत्मा के बाजू में आकर बैठता हूं, मतलब ब्रह्मा बाबा की आत्मा या ब्रह्मचर्य में बैठी है, उसके पास में ही मैं आकर बैठता हूं। मेरे में पावर है, शक्ति है, आर्गन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया, मैं मालिक बन गया। इन आर्गन्स द्वारा बैठ समझाता हूं, इनको एडम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एडम या आदम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी, मनुष्यों का सिजरा है ना, ये माता पिता भी बनते हैं, इनसे भी रचना होती है। कौन माता पिता बनते हैं? माता पिता
ब्रह्मा बाबा बाजी,
ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा माँ भी बनता है और बाप भी बनता है। जैसे शिव बाबा माता पिता है, ऐसे ब्रह्मा भी माता पिता है। एडम आदम को कहते हैं ना, अंग्रेजी में एडम बोलते हैं, उर्दू में आदम बोलते हैं, हिंदी में उसे मनु बोलते हैं, पहला मनुष्य।
मुसलमानों को वो नहीं है क्या आदम?
ब्रह्मा
नहीं, क्या ये मुसलमानों का वो आदम नहीं है जिसको पत्थर मारते हैं?
आदम को पत्थर नहीं मारते, शैतान को पत्थर मारते।
अच्छा,
जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं वहाँ भैरव है और माता है, तो माता में तो जाके दर्शन करेंगे उसको, तो जो चढ़ाना चढ़ाएंगे, परंतु शैतान जो भैरव है वहां जाकर पत्थर मारेंगे। भैरव को यदि आपने पत्थर नहीं मारा तो आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई। हाँ, भैरव को दर्शन ही, भैरव को पत्थर मार के आना है। तूने हमारी माता जी को मारा तो माता जी को तंग किया था, वो भीष्मर है। पत्थर मारना माना उसके प्रति अपनी नफरत दिखाना, भैरव माना शैतान। ऐसे ही मक्का के अंदर जो उनका बना हुआ है वहां तो वो जाकर के उसको परिक्रमा करते हैं और उसको चूमते हैं जाकर के, कि तू तो हमारा अपना है। और जो शैतान का बना रखा है उन्होंने, जैसे हमने यहाँ भैरव बना रखा है ऐसे उन्होंने वहां शैतान बना रखा है, तो वहां पर वो पत्थर मारते हैं। होता क्या है कि अब वो छोटी सी जगह है जो मक्का में बना है, वो भी छोटी सी जगह है और शैतान की भी जगह है, तो वो भी छोटी सी जगह है। अब भीड़ हो जाती है ज्यादा छोटी सी जगह में, अब कब तक वो अंदर जाए और उसको पत्थर मारे? अब वो अंदर पहुंचने की मतलब वो नहीं रखते, सहन शक्ति नहीं कर पाते, कहते कब तक लाइन में लगे रहेंगे, जाएंगे पत्थर मारेंगे, जाएंगे पत्थर मारेंगे। अब एक एक पत्थर मारने में टाइम बहुत लग रहा होता है, तो इसलिए वो बाहर से ऊपर से पत्थर मार देते हैं। ये लोग वो कहते हम अब ऊपर से पत्थर मारेंगे तो पत्थर तो दीवार से टकरा कर वापिस आएगा ना, पत्थर दीवार से टकरा कर आएगा तो जो दर्शन करने गए होते हैं उनके ऊपर पत्थर पड़ते हैं वो, तो इसलिए वो पत्थर फेंक कर मारते हैं दूर से, और जो दर्शन करने के लिए गए हुए हैं उन पे पत्थर, तो कैसे होते हैं चलो दो मील की लाइन है तो यहीं से पत्थर मार दो, तो पत्थर कहाँ जाएंगे, वो दर्शकों पर जाएंगे, तो जिसके कारण भगदड़ मच जाते हैं, किसी को चोट लग गई। अब जगह तो छोटी है, उस समय की बनी हुई है जगह, तो उस समय की जो जगह बनी हुई है वो जगह छोटी है, वहां पर ज्यादा लोग पहुंच जाए तो क्या होगा, यही वहां पर होता है हर बार। इनसे जो रचना होती है पुराना परंतु एडॉप्ट किया हुआ है, नहीं तो ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये किसकी रचना तो होंगे, होगी ना, रचयिता तो एक ही है, बाप ने तो इनको एडॉप्ट किया है। ये इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाए तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी नॉलेज है, छोटे छोटे बच्चे बैठ करके सुनाए कहेंगे ये तो बहुत बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें बहुत खुशी रहेगी, कभी उबासी नहीं आएगी, कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहाँ तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए, कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती, ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी, यहाँ भी धारणा नहीं होती है, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है, देही अभिमानी वो बैठ नहीं सकेंगे, कोई ना कोई बाहर की बातें याद आ जाएंगी, पॉइंट आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे, शूर बुद्धि झट नोट करेंगे। ये पॉइंट बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स की कलम भी टीचर को देखने में आती है ना, सेंसिबल टीचर की नजर सब तरफ फिरती रहती है, सब को सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का, मेहनत का सर्टिफिकेट निकालते हैं, कितना अक्सेंट रहा ये भी निकालते हैं। यहाँ तो भाव प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, पर स्कूल में जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है या जो साल का सर्टिफिकेट बनाया जाता है उसमें उसकी अटेंडेंस भी लिखी जाती है, कि साल में इतने दिन स्कूल में आए। तो यहाँ पर बाबा कहते बच्चे आ तो जाते हैं, रोजाना आकर बैठ जाते हैं, सुनते तो है नहीं, समझते तो है ही नहीं, क्या फायदा। यहाँ उस दुनिया वालों की तरह सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, यहाँ तो जो जितना अच्छी तरह समझेगा धारण करेगा उसी प्रकार से समझाया जाता है। कई कहते हैं बुद्धि जल है, कई कहते हैं इनकी बुद्धि क्या है, जल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे, तो इसकी बुद्धि जल है बाबा क्या करेगा, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, हिसाब किताब है। बाप तो तकदीर एक ही कराते, पुरुषार्थ एक ही कराते हैं, अपने आप को आत्मा समझ, मुझ बाप के डायरेक्शन पर चलो, सीधी सीधा था। अब तुम नहीं चलते तो तुम्हारा भाग, तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे। स्कूल में कोई पास कोई फेल होते ही हैं, ये है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे। नेशन देख समझाना पड़ता है, वहां राष्ट्र को देश को देखो और उस देश के हिसाब से उनको समझाओ। पहले पहले ऊंच से ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है, वे कैसे लिबरेटर गाइड है, हेवन में ये विचार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य, आखिरी दुनिया का राज्य, पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एज नहीं कहेंगे, पुरानी दुनिया को गोल्डन एज दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी अब पुरानी हुई है, बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है वे ऑटो पॉइंट्स नोट करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, पॉइंट नोट करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे चिट्ठी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य था, नंबर एक पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी, पढ़ते समय कभी उबासी आदि ना आए, बुद्धि योग इधर उधर ना भटके, पॉइंट नोट कर धारण करते हो रहो, पवित्र बन बात के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनो, सर्विस में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान मर जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भाव, ये मर जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है, ये कर्म योगी जन्म है। मर जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जीवन। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है ना कि परतंत्र, ये देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए, पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर कर चला रहे, जिम्मेवारी बाप की है ना कि आपकी, बाप ने डायरेक्शन दिया है, बाबा ने क्या दिया है, बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं तुम करते चलो। किसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। स्लोगन समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति का मतलब होता है जो इन आंखों से हम देख रहे हैं उसके पास। तो हम हाँ तो समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके आत्मा शक्तिशाली बने। बेहद की वैराग्य वृत्ति अव्यक्त इशारा कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूं तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कोई भी कार्य मुश्किल शायद कितना भी होगा ना, बाबा की स्मृति में रहेंगे, स्मृति में रहने से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के हवाले ऊपर रखो, स्वयं हल्के हो जाओ तो बाप उन सब का बोझ कर दे और खत्म कर दे। ऊपर रख, स्वयं बाप के ऊपर रखकर स्वयं क्या हो जाओ, हल्के हो जाओ तो सारी जिम्मेवारियां बाप पर दे दो। सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और परिश्ते के समान नाचते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। अच्छा ओ शांति
भाई, चलोगल दोबारा समय पर।
समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। और समय की समीपता का पता कैसे लगेगा, जब हमारा संसार से बेहद का वैराग्य हो जाएगा। संसार की कोई भी बात में मेरी आसक्ति नहीं होगी, अटकने की बात नहीं होगी। तब समझ लेना है कि हमारी जो है ना क्या कहते हैं फाउंडेशन, वो समय की वो ये है कि हम जितना जितना वैराग्य वृत्ति आती जाए संसार की किसी भी वस्तु में जरा भी मेरा अटैचमेंट ना रहे। जब संसार की वस्तुओं से आपका अटैचमेंट खत्म होता जाए तो समझ लेना है कि मेरा पार्ट खत्म होने वाला है। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल विचार।